नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 70% वायदे पूरा करने का दावा किया। राज्य सरकार ने 333 स्टार्टअप्स को 10 करोड़ 79 लाख रुपए की फंडिंग दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। और देश में पिछले 10 सालों में फसल उत्पादन में 44% की बढ़ोतरी हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की दिशा और दशा बदलने के लिए ठोस शुरुआत की है। श्री शर्मा ने आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन में अपनी सरकार के दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में हर क्षेत्र में काम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा की ओर से जारी संकल्प पत्र में 392 वादे किए गए थे, जिनमें से 70% वायदे या तो पूरे हो चुके हैं या उन पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की कई योजनाओं में राजस्थान पहले और दूसरे स्थान पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे लोगों को चेतावनी दी कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है।
जहाँ पहले योजनाएं फाइलों में दब जाती थी, वही हमने उन योजनाओं को जमीन पर उतारा है और सीधे जनता तक उनका लाभ पहुंचाया। आप सब जानते हैं, राज्य में गत सरकार के समय आए दिन होने वाली पेपर लीक की घटनाओं के कारण युवा हताश और निराशा में डूबा हुआ था। RPSC, RSSB वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी कर बिना पेपर लीक 296 परीक्षाएं समय पर आयोजित की। हमने 90,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई है। 153,000 पदों पर भर्तियों की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही हम 20,000 और सरकारी नियुक्तियां देने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पिछले दो साल में राज्य की आधारभूत संरचना तथा निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए कामों की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र समर्थित योजनाओं में उल्लेखनीय काम हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने राज्य की भजनलाल सरकार के दो साल के कार्यकाल को विफल बताया है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी देना अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है, लेकिन अब तक जिन युवाओं को नौकरी मिली उनकी वैकेंसी पिछली सरकार ने ही निकाली थी। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है।
विधानसभा के अंदर अगर सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिए गए हैं उनकी बात हम करें तो भी सारे आश्वासन पेंडिंग पड़े। बजट घोषणाओं की भी मैं बात करूं तो बहुत सी ऐसी बजट घोषणाएं हैं जो ये पूरी नहीं कर पाए। और करें तो पेंशन समय पर नहीं आ रही, पालनहार समय पर नहीं आ रहा, स्कॉलरशिप समय पर नहीं आ रही, किसानों को जो सब्सिडी मिलती है वो समय पर नहीं आ रही, किसानों की फसल खराबी का जो मुआवजा मिलना है वो समय पर नहीं है। कानून व्यवस्था की बात करें, कौन सा ऐसा दिन जाता है जब कहीं धमकी नहीं मिलती, जहाँ मर्डर नहीं होता, जहाँ चोरी डकैती नहीं होती, जहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होते, बच्चों के साथ रेप नहीं होते, एट्रोसिटी नहीं होती, कानून का राज कहीं नजर आता नहीं है। ये स्थिति सरकार की है।
राज्य सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर जयपुर में नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसमें 333 चयनित स्टार्टअप्स को 10 करोड़ 79 लाख रुपए की फंडिंग वितरित की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नवाचार ही अर्थव्यवस्था और समाज के विकास का इंजन है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राजस्थान तकनीकी प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है, जहां आई स्टार्ट पर 7,200 से ज्यादा स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं और इनमें से 2,600 से ज्यादा का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आगामी राजस्थान डिजिफेस्ट 2026 के टीजर और हैकेथॉन का भी लोकार्पण किया, जिसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे नवाचार के क्षेत्र में आगे आकर प्रदेश को ग्लोबल लीडर बनाएं।
आज जिस तेज गति से दुनिया बदल रही है, उसमें नवाचार ही हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के विकास का सच्चा इंजन बन सकता है। युवा भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपना काम स्टार्ट करिए। आप पहली सीढ़ी पर चढ़िए, एक नवाचार करिए, दूसरा नवाचार करिए, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको मंजिल मिलेगी, हर कीमत पर मिलेगी। सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। साथियों, हम सब मिलकर राजस्थान को तकनीक और नवाचारों के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बना सकते हैं और समस्त प्रदेशवासियों के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं।
राज्य सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए 200 विकास रथों को जिलों के लिए रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री ने जयपुर में ओटीएस से 50 विकास रथों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रदेश के जिला मुख्यालयों से जिला प्रभारी मंत्रियों ने भी 150 रथों को रवाना किया। ये प्रचार रथ प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। इन रथों के माध्यम से सरकार की 2 साल की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं और नीतिगत सुधारों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पाली में, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भरतपुर में, जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बांसवाड़ा में और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने करौली में प्रचार रथों को रवाना किया। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की निगरानी के लिए राजस्थान में विशेष सूची प्रेक्षक की नियुक्ति की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि रोहिणी भाजी भाकरे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष सूची प्रेक्षक ये सुनिश्चित करेंगी कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी रहे। वे फरवरी 2026 में अंतिम सूची प्रकाशित होने तक राज्य में रहेंगी। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विशेष प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। ये देश की 16वीं और आजादी के बाद से 8वीं जनगणना होगी। इसके तहत जातिगत गणना भी करवाई जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये पहली डिजिटल जनगणना होगी। एंड्रॉयड और iOS दोनों मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि जनगणना कार्य में 30 लाख कर्मियों को लगाया जाएगा।
सेंसस 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में फोकस रहेगा हाउसहोल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा भारत के कानूनों के हिसाब से।
जनगणना के लिए कर्मचारी हर घर तक पहुंचेंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोयला संपर्क नीति कोल सेतु में सुधार को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में देश में फसल उत्पादन में 44% की बढ़ोतरी हुई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और समग्र कृषि विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दे रही है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत क्रूज पर्यटन का नया केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि होटलों और रेस्तरां में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है तथा प्रमुख वैश्विक होटल समूह देश में निवेश कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने देश में बढ़ते पर्यटन में वंदे भारत रेलगाड़ी की भूमिका का उल्लेख किया। राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मिशन समृद्ध दीदी अभियान शुरू किया है। एक महीने के इस विशेष अभियान का औपचारिक शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्मृति शरण ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना, उनके उद्यमों को बढ़ावा देना और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है। विकास अध्ययन संस्थान जयपुर में विकसित राजस्थान और विकसित भारत एट 2047 विषय पर दो दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज शुरू हुआ। संस्थान के शासी मंडल के अध्यक्ष डॉ. अरविंद मायाराम ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। IDS के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर संजय लोढ़ा ने प्रवासी भारतीय दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। जालौर में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित दो दिन की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आज संपन्न हुई। समापन समारोह की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एहसान अहमद ने की। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी को देखने के लिए स्कूलों के विद्यार्थी और आमजन बड़ी संख्या में पहुंचे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, 70% वायदे पूरा करने का दावा किया। राज्य सरकार ने 333 स्टार्टअप्स को 10,79,00,000 रुपए की फंडिंग वितरित की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। और देश में पिछले 10 सालों में फसल उत्पादन में 44% की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।